वो भगवान कृष्ण की भक्ति के बस हमको बुलाए थे, सब प्रोग्राम किए थे, और उन्होंने प्रोग्राम में हमसे कहा कि हमारी बहन ऐसे है, इसको जरा समझा दीजिए, इसको समझा दीजिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। बहुत देर तक बहस होते 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 मैं ये कह दिया कि ठीक है, तुम घर में कृष्ण का फोटो रखी हो तो कहती, वैसे कृष्ण भगवान से मुझे प्रेम है, मैं कहा फोटो रखी हो तो नहीं तो रखो फोटो, तो ले गई एक मंदिर से खरीद करके फोटो ले गई रखी। मैं यह बता रहा था किस तरह की विषमता, संस्कार भेद होता है पूर्व जन्म का। आदमी समझता है कि नहीं, इस जन्म में हम जैसा जिसको बनाना चाहेंगे बना देंगे। आपने कभी कभी ऐसा भी बेटा देखा होगा जिसको पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार जाते हैं, नहीं पढ़ पाता। और कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं होती है लेकिन वो बहुत पढ़ जाते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जन्म लेते ही रोगी रहते हैं, किसी को पोलिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो इस जन्म में बेचारा क्या किया, कुछ नहीं किया, पूर्व के संस्कार हैं, बहुत काल से चल रहे हैं कर्म हमारे साथ। तो यहाँ जब किसी का धर्म सिखाना हो, कर्तव्य सिखाना हो, तो उसके स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है, उसके स्वभाव के अनुसार उसको धर्म सिखाना चाहिए। और स्वभाव किसी का है कि मैं घर गृहस्थी बसाऊंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, और उसको कह दीजिए कि बाबा जी हो जाओ, तब तो उसका सर्वनाश हुआ। और कोई संस्कार से बाबा जी बनने वाला है, सन्यासी बनने वाला है, उसको कहिए कि तुम संसार में जाओ, तो दोनों का नाश हुआ। स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति काम करेगा। अर्जुन अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करना चाहते थे। भगवान ने कहा कि क्या तुम इस तरह से भीख मांगना चाहते हो, ब्राह्मण का काम करना चाहते हो। प्रकृति स्वाम नियोक्षति मिथ्यस व्यवसायस्ते, प्रकृति स्वाम नियोक्षति। आज तुम जो क्षण भर के लिए निर्णय करते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारी प्रकृति है युद्ध करने की, तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध में जोत देगा, तुम्हारा ये निर्णय बेकार है। आज कहते हो युद्ध नहीं करूंगा, और कल ही ये पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र में मुझको लोग गाली दे रहे थे, यह कह रहे थे कि अर्जुन कायर है, भाग गया, तो लौट करके युद्ध करोगे। कौन कहता है कि अर्जुन कायर है फिर तुम धनुष उठा लोगे। और वही अर्जुन जो एक दिन युद्ध नहीं कर रहे थे, एक दिन युधिष्ठिर महाराज की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए, केवल इतना कह देने से कि गांडीव धनुष दूसरे को दे दो। महाराज युधिष्ठिर ने कह दिया गांडीव धनुष धारण करने के तुम अधिकारी नहीं हो, इसको भीम को दे दो, चाहे कृष्ण को दे दो, तुम इसको धारण करने का अधिकारी नहीं। इस पर वो युधिष्ठिर का मस्तक काटने के लिए तैयार हो गए। इसको कहते हैं स्वभाव। इसीलिए कई वर्ण बनाए गए हैं, कई आश्रम बनाए गए हैं, जथा वर्णम जथाश्रमम, वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार सब व्यवस्था दी जाती है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। गृहस्थ होने की जिसकी योग्यता है, जिसका स्वभाव है, उसको मति भेद करके विरक्त नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो विरक्त होकर के वो भजन भी नहीं करेगा, कुछ नहीं, केवल भार होगा, वास्तव में केवल भार होगा। ज्यादा से ज्यादा करेगा तो गांजा का स्टॉक कुछ कम करता रहेगा, गांजा पिएगा और क्या करेगा। ऐसे बहुत से विरक्त हम लोग देखते हैं, बस उनके जीवन में एक ही काम है, टाइम से गांजा पीना, बस गांजा पीते रहते, ये भांग खाते रहते। तो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार धर्मों का वर्णन भीष्म पितामह ने किया। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, और वैश्य का क्या कर्तव्य है। लेकिन आज के युग में तो भागवत में लिखा गया है कि सभी वर्ण शूद्र हो जाएंगे। इतनी समाज व्यवस्था बिगड़ चुकी है कि अब वर्णाश्रम धर्म की बात कहने वाले लोग बेवकूफ माने जाएंगे, ये क्या पागल जैसा कर रहे हैं। विवाह आदि में भी सब नियम टूटते जा रहे हैं, लेकिन पहले यह बहुत सुंदर व्यवस्था थी। वर्ण का विभाजन आश्रम का विभाजन, और गृहस्थ एक आश्रम है, तो आश्रम आयु के अनुसार स्वभाव के अनुसार व्यवस्थित। आज 2 दिन का बच्चा है और उसका विवाह कर दीजिए तो वो तो चलाएगा नहीं गृहस्थी, उसके लिए उचित उम्र होती है, उसका संस्कार देखा जाता है। इसी तरह से वानप्रस्थ जीवन है, संन्यास जीवन है। कलयुग में संन्यास मना कर दिया गया है क्योंकि संन्यास के लायक कोई नहीं रहेगा, कारण यही है। तो कम से कम आश्रम की मर्यादा तो बची रहे। आजकल के सन्यासी बहुत ऐश्वर्य वाले होते जा रहे हैं, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कहीं। गृहस्थ दरिद्र हो रहे हैं और तपस्वी लोग धनवंत होते जा रहे हैं। एक अयोध्या से महात्मा आए थे कथा कहने के लिए, तो व्यंग में कह रहे थे इस तरह से, मैं एक दिन एक शहर में जा रहा था, वो उसमें रहे थे, मैं एक शहर में जा रहा था तो एक बहुत सुंदर घर देखा, वहां बहुत कारें खड़ी थी, तो मैं किसी से पूछा कि ये किनका घर है, तो पता लगा कि ये एक महासन्यासी का घर है, फर्स्ट क्लास का बंगला है, गार्डन है, कार है, तो किसका घर है, तो सन्यासी का है। सब ठीक है, तो आगे बढ़ा तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे और बाहर एक सुंदरी स्त्री बैठी थी, बहुत सुंदर घर था, तो पूछा ये बच्चे किसके हैं, ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, अमुक ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अच्छा। और आगे बढ़ा तो मैं देखा बहुत सी मोटर गाड़ियां हैं, स्त्रियां हैं और बच्चे भी हैं, बहुत सुंदर सजा हुआ घर है, झूला लगा हुआ है। पूछा कि ये किसका है, उसे स्विमिंग पूल आदि भी सब था। पूछा ये किसका है, तो महात्यागी जी का है। उसे और आगे बढ़ा तो आगे बढ़ करके देखा कि एक गेरुआ कपड़ा पहने हुए व्यक्ति कई स्त्रियों से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो पूछा ये किनका ध्यान, ये किसका आश्रम, ये ध्यानी महाराज का है, 24 घंटा ध्यान में रहते हैं, यही ध्यान है उनका, टीवी देखना, स्त्रियों से बात करना, यही ध्यान है। तो ये कलयुग की दशा हो गई, वो तो एक व्यंग कर रहे थे लेकिन वास्तव में ये सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। त्यागी जी कि उन्होंने त्याग का ही त्याग कर दिया है, इतना बड़े त्यागी, संन्यास का ही संन्यास कर दिए, दिवाला निकल गया कलयुग। जहिया से आयल कलयुग के पहरवा के धर्म किनरवा भैलन हो राम। जब से कलयुग आया धर्म किनारा हुआ, अब कहां वर्ण धर्म है और कहां आश्रम धर्म है, कोई नहीं पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के मुख से महाराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता है ठीक ठीक जानना, इसलिए वो जनता को उनके धर्म में लगाएगा और धर्म के नियम तोड़ने वाले को दंडित करेगा। राजा का पहला कर्तव्य है कि मनुष्यों के इस धर्म को जानना कि क्या धर्म है। तो आजकल के तो जो राजा बन रहे हैं वो स्वयं ही धार्मिक नहीं है, धर्म का पालन नहीं करते, और जनता के लिए क्या कहते हैं, तुमको जो कुछ मानना हो मानो, हम इसमें दखल नहीं देंगे, धर्म निरपेक्ष। तो ये कहो कि धर्म विमुख है कि धर्म निरपेक्ष, उसको थोड़े कहेंगे, कुछ भी मानो हम तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, तुम गाय खाना चाहते हो ठीक है हम व्यवस्था करेंगे, हम कसाई खाना खोल देंगे तुम खाते रहो ठीक है। ये आजकल के राजा की दशा है, कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई सिखाया नहीं, न वो सीखना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर राजा बनने पर यह सीख रहे हैं प्रत्येक जनता का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसको सीख लूं तब लागू करूंगा। और कोई धर्म की अवहेलना करेगा तो इसको दंडित करूंगा। वह धर्म का मतलब है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। और वैराग्य रागोपाधिभ्याम, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी संसारिक कामना होती है, कोई ऐसा होता है जिसकी कामना नहीं होती है। तो जिसको कामना नहीं है उसका क्या कर्तव्य होगा, उसके लिए शास्त्र क्या कहता है? जिसके मन में काम है, संसारिक लालसा है, उसको कैसे काम में लगाएंगे, मतलब किस क्रिया में लगाएंगे, इसको उन्होंने सीखा। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से राजधर्म, राजधर्म मतलब राजनीति, राजा का क्या कर्तव्य है, यह उन्होंने सीखा भीष्म पितामह के मुख से। आप महाभारत शांति पर्व में पढ़ सकते हैं, राजा के धर्म का वर्णन कर रहे हैं राजनीति का, तो कोष कैसा होना चाहिए, किसी भी अवस्था में राजकोष खाली नहीं होना चाहिए, और सेना कैसी होनी चाहिए, सेना में कैसे कैसे सैनिक लेना चाहिए, सेनापति कैसा होना चाहिए, और अपना सचिव किस कुल का होना चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए, कितना उम्र का होना चाहिए, कैसा स्वभाव वाला होना चाहिए, और किस स्थिति में राजा को अपने शत्रु से संधि करनी चाहिए और किस स्थिति में संधि नहीं करनी चाहिए, कई प्रकार की बातें राजा को बताई गई है। और हमेशा जब वो मंत्रणा करे मंत्रियों के साथ तो गुप्त मंत्रणा करे। आजकल के ये लोग जो मंत्रणा कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो पूरा भारत टीवी पर देख रहा है और देख रहा है कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, यही बस दिखाया जाता है। एक दूसरे को गाली देना यही राजनीति रह गई आज की, बस जनता मरे भाण में जाए इससे उनको कोई मतलब नहीं। ये कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति चला दिया कि सारी चीजें जनता को दिखाओ, कोई भी नियम बन रहा है पार्लियामेंट में तो जनता उससे बचने का उपाय पहले ही ढूंढ लेती है, क्योंकि उसको पता लग रहा है कि ये नियम बनने जा रहा है। मंत्रणा हमेशा गुप्त की जाती है, ऐसा कहा गया है कि दवाई मंत्रणा जितना ही गुप्त रखे जाते हैं उतना ही फलीभूत होते हैं। वैद्य लोग दवा देते हैं भले खरपात दे दे, बताते नहीं है कि किस चीज से बना हुआ है, बता देने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। मतलब दवा लेने वाला कहता है वो यही है तो उसकी श्रद्धा नहीं रहती है। तो दवा का भेद नहीं देना चाहिए और मंत्रणा नहीं। तो राजनीति में मंत्रियों से गुप्त मंत्रणा लेना राजा के लिए आवश्यक होता है जिसको दूसरे लोग ना जाने। अब क्या राजनीति होगी, क्या राज चलेगा, जबकि इस तरह के राजा लोग अपनी सारी बातें दिखा रहे हैं, कोई गुप्त नहीं रह गया। इसको राज धर्म कहते हैं, राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य राजा को सीखना चाहिए। आज के युग में तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, वास्तव में जैसे शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग है, भाई ये व्यक्ति प्रशिक्षण पाएगा तो शिक्षक बनेगा, ड्राइविंग सीख जाएगा तो ड्राइवर बनेगा, वैसे ही सांसद और विधायक बनने के लिए पहले ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ खास ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में पास हो जाए वही नॉमिनेशन दे सकता, नहीं तो वोट में खड़ा नहीं हो सकता। जानता ही नहीं राजनीति और बस राजा बनने के लिए चल दिया। उसको सर्टिफिकेट कौन देते हैं, मूर्ख लोग, जनता सर्टिफिकेट देती, हाँ हाँ आप जाइए दिल्ली और आप बढ़िया से नियम बना सकते हैं हमारा जो भी सुख सुविधा है सब खत्म कीजिए, इस तरह से वोट पर हो गया, कोई ट्रेनिंग नहीं। महाराज युधिष्ठिर सीख रहे हैं भीष्म पितामह से राज्य करना, राज धर्मान, दान धर्मान, दान का अर्थ देना, किसको देना चाहिए, किस स्थिति में देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। दान का अर्थ यहां चैरिटी नहीं, दान का यहां अर्थ त्याग है। राजा के पास सारा धन होता है, राजकोष होता है, तो किस समय वह दे, तब सिखाया जाता है जब अकाल पड़े तो जनता की सेवा में अपना धन दे, इसको दान धर्म कहते हैं। तो कोई बहुत आवश्यकता में फंस गया है उसको दान दिया जाता है, कोई बहुत बड़ा राजा है हमको दबा रहा है तो कभी कभी दान दे करके भी बच जाया जाता है, उसको दान दिया जाता है, उसको भी दान। इसलिए दान धर्म सीखना राजा को जरूरी है, उसके पास सारा राजकोष होता है, किसको दे कैसे दे ये दे सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जहाँ देना आवश्यक है वहां नहीं दिया और जहां बिल्कुल फालतू है वहां खर्च कर दिया, तो उससे लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। अच्छा, सबके बाद कैसे हम भवबंधन से मुक्त होंगे इसके लिए भी कुछ सीखना है। भवबंधन से मुक्त होने के लिए इसी का अनुवाद कुछ मोक्ष भगवत धर्म से किया गया है। हम तभी संसार बंधन से छूटेंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। साधारणतया खान पान, व्यापार, खेती गृहस्थी के अलावा प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ मोक्ष धर्म का आचरण करना चाहिए जिसे मुक्त हो सके। आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसे कुछ कैदी जेल में रहते हैं तो खाते हैं पीते हैं, उनको कंबल या क्या क्या दिया जाता है, लेकिन उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उनके कुछ स्वजन प्रयास करते रहते हैं। मजिस्ट्रेट के पास जाना, दरखास्त देना, ये करना वो करना, उनके मुक्ति का उपाय वो लोग सोचते रहते हैं। केवल खान पान चलता रहे जेल में इसी से संतुष्ट नहीं रहते, जेल से बाहर निकलने का भी प्रयास करना चाहिए। जन्म मरण से पार होना इसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष कैसे मिलेगा इसके लिए कुछ कर्म है, नियम है, उसको भीष्म पितामह ने समझाया। स्त्री धर्म, उसके साथ ही साथ स्त्रियों का क्या कर्तव्य है इस पर उन्होंने प्रवचन किया। स्त्री धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य। सामान्य रूप से स्त्री के कर्तव्य को बताया गया है, स्त्री मात्र को, और स्त्री में भी फिर डिवीजन होने लगता है। विवाहिता स्त्री का क्या कर्तव्य है अपने पति के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, कर्तव्य सीखना चाहिए। आज के युग में पुरुषों का कर्तव्य तो कुछ सिखाया जाता है, लेकिन स्त्रियों को कोई ट्रेनिंग नहीं, वो क्या करें, कब जगे, जग करके क्या करें, कैसे घर को बुहार करके साफ रखें, और टीवी कभी न देखें, ये सब कोई ट्रेनिंग नहीं। और यहां तक कि पति तक शिक्षा नहीं देता है, वो क्या शिक्षा देगा, वो खुद ही शिक्षित नहीं है इस विषय में। जगना चाहिए, सूर्य उगने से पहले तो जगता है 8 बजे, तो पत्नी को क्या ट्रेनिंग देगा। मनुष्यों के लिए, स्त्री हो चाहे पुरुष, अपने कर्तव्य को सीखना बहुत आवश्यक है। पहले के बड़े बड़े लोग जो सुपीरियर होते थे, वे अपने इन्फेरियर को, जूनियर को हमेशा शिक्षा देते रहते थे हर एक अवस्था में। सीता जी आ रही थी अपने नैहर से ससुराल, तो उनकी माता जी शिक्षा दे रही थी। रामायण में वर्णन है कि बेटी इस तरह से पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। और शिक्षा में उनकी माता जी यह कह रही हैं कि पति के बिना खाए मत खाना। वाल्मीकि रामायण में मैं पढ़ा हूं, तो वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पति भोजन न करें तब तक मत खाना, उनके खाने के बाद खाना। अगर यह बात कही जाए आज के युग में तो स्त्रियां तुरंत प्रश्न करती हैं, पति 4 बजे तक घर आएंगे तब तक प्रतीक्षा करती रहे। ये खबूचड़ स्त्रियों का विचार है वास्तव में। 4 बजे तक प्रतीक्षा करो क्या हो जाएगा, मर जाओगी, क्या हो जाएगा प्रतीक्षा करने में। पति भी तो कोई स्टोन नहीं है, पत्थर नहीं है, एक दिन देखेंगे कि वे हमारे बिना भूखी रह गई तो वो स्वयं ही कहेंगे कि खा लो या व्यवस्था करेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये कोई विचार है। मैं एक बार कह दिया कि
एक जगह कथा में कि जब पति भोजन कर रहे हो तो स्त्री का धर्म है कि वह पंखा झले अपने पति को। एक स्त्री खड़ा होकर प्रश्न की कि और सीलिंग फैन लगा हो तो क्या जरूरत है पंखा झलने की। इस तरह का प्रश्न उठता। मैं कह दिया कि अभ्यास रखो, रखना ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन लाइन कट जाए, किसी दिन पावर चला जाए, तो तुमको कम से कम आदत रखनी चाहिए। सीलिंग फैन है, आदत तो अपनी रखनी चाहिए ना। सवेरे उठ करके पति को प्रणाम करे, देवता को प्रणाम करे। ये कुछ स्त्रियों की तो आदत होती है सवेरे उठते ही पति को गाली देना चालू करती हैं, यही उनका मंगलाचरण होता है। कुछ ना कुछ भद्दा बोलना, गाली देना, ये बहुत बड़ा पतन है स्त्री समाज का। वास्तव में सीखना चाहिए कैसे बोलना है। कालिदास की एक कविता है, उसमें वे लिखे हैं, एक माता अपने पुत्री को सिखा रही है, जब वो ससुराल जा रही है तो कहती है, बेटी कैसे उस शब्द पहला है मैं भूल रहा हूं, अभ्युत्थान उपागते गृहपत्तव तद्भाषणे नम्रता। जब तुम्हारे पति आवे कहीं से बाहर से तो उनके आने की आहट पाते ही तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। घर में प्रवेश करने पर पति कभी बैठा हुआ तुमको न देखे। ऐसा नहीं कि पति जी बाहर से आए और रानी जी अभी पलंग पर लेटी हैं और धीरे धीरे उठ रही हाथी की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ही खबर मिले तभी बस। आजकल तो खबर भी मिल जाती है, घंटी लगी हुई है, बजाए खोलो उठ कर, कम से कम इतना तो करो। इसको अभ्याग, इसको अभ्युत्थान कहते हैं संस्कृत में, अभ्युत्थान। जब ही पता लगा वो आ गए तो बस खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा होकर सबसे पहले पानी देना चाहिए, पूछना चाहिए, जल चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बेसिन पर बस पानी पी लेंगे, खुला कर लेंगे, ये करेंगे। तद भाषणे नम्रता, उनसे जब भी बोलना हो तो नम्र भाव से बोले, अपने को दासी समझ करके, अपने को दासी समझ करके जब बोलना हो तब ऐसे बोले, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने मुवक्किल लोग बोलते हैं, अपराधी लोग बोलते हैं, ऐसे रहे, भय से नहीं प्रेम से नम्र रहे। तद पादार्पित दृष्टि आसन विधव, और जब भी देखना हो तो पति के चरण की ओर देखना चाहिए अधिक से अधिक। बहुत निधड़क होकर के उनके चेहरे की ओर देखने का साहस कभी कभी करना चाहिए, सब समय नहीं, चरण की ओर देखना चाहिए। तब आसन विधि, और स्वयं ही उनके लिए आसन लगावे, तब आइए बैठिए कीजिए, रोज की बात है। क्योंकि पति बाहर से आया है तो पता नहीं कितना वो दुख में आया होगा, गाड़ी में धक्का खाते हुए आया होगा, भूखा प्यासा आया होगा, तो अपने घर में उसको शांति मिलनी चाहिए, वो फील करे कि ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट, उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि अब मैं बिल्कुल बेस्ट सुखद स्थान में पहुंच गया। और यही सुख है वास्तव में पति को, नहीं तो अगर स्त्री सेवा करने वाली न हो तो बाहर तो जलेगा ही, भीतर अपने घर में भी आकर के जलेगा। यह विधि है कि आसन दे, और सुप्ते तत्र सहित तत्प्रथम तो जहिया च निद्रा मिति, और उसके सोने के बाद सोवे, पति जब सो जाए, सोने जाए, तो निश्चित प्रतिदिन चरण दबावे, और चरण दबा करके उनके सो जाने के बाद तब सोवे। जो धर्म है स्त्री, वो माता जी अपनी पुत्री को सिखा रही हैं कि तुम जाना ससुराल में तो ऐसे रहना, जब पति जी सो जाए तब सोना, और उनके जगने से पहले जग जाना। सुप्ते तत्र सुईत तत् प्रथम तो जहिया त निद्रा मिति, पति के जगने से पहले जग जाना चाहिए। हे पुत्री, यही प्राच्य सिद्धांत है। भारत के प्राचीन मुनियों ने, ऋषियों ने एक कुलवधू के लिए यही नियम बनाया, यही सीखना चाहिए। तो आजकल की माता जी लोग तो सिखाएंगे, बेटी बिल्कुल आराम से रहना, दुख मत भोगना। वो तो जाएंगे, काम करेंगे, आएंगे, लेकिन तुम खा लेना, टाइम पर खा लेना, 9 बजते खा लेना, यही सिखाती। दुख मत भोगना, तकलीफ मत उठाना, तकलीफ मत उठाना। तकलीफ क्या है? स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख है पति की सेवा, सेवा करके सुख प्राप्त करना चाहिए। सीता जी वन में चली गई भगवान के साथ, वनवास सीता को नहीं दिया गया था, राम को दिया गया था, 14 वर्ष राम वनवास, लेकिन फिर भी सीता जी गई। तो यहाँ स्त्री धर्म शब्द आ गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्त्रियों के धर्म पर प्रवचन होना चाहिए, और भीष्म पितामह ने प्रवचन दिया। स्त्री को स्वयं हो सकता है कि अपने धर्म का ज्ञान न हो, तो दूसरा कोई सिखावे ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य। एक बार मैं प्रवचन किया था ह्यूस्टन में, अमेरिका में, तो मैं यह श्लोक को व्याख्या करके समझाया, नारी धर्म शब्द आ गया था। तो दूसरे दिन 3 स्त्रियों ने हमारे पास लिख करके दिया, वो अभी भी हमारे पास है, अंग्रेजी में लिख करके दिया कि हम लोग आज से बहुत नियम पालन कर रही हैं, और अपना अपना अलग नाम दिया था, मैं पालन कर रही हूँ और मैं अब चरण दबाना चालू कर दी, और मुझे बहुत सुख मिल रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत आपको थैंक देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने बताया। ये तो कोई बात बताता ही नहीं है। आजकल की स्त्रियां समझती हैं कि मैं सेवा करने के लिए नहीं हूं, केवल हक लेने के लिए बराबर का समान, इसके लिए सोचती। तो स्त्री धर्म का वर्णन इन्होंने किया, भगवत धर्म। भगवत धर्म का अर्थ होता है भगवान के प्रति जीव का जो कर्तव्य है वह। हम लोग इस संसार में जी रहे हैं तो हम जानते हैं कि सरकार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, भाई के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति या माता के प्रति, पत्नी के प्रति, लेकिन सबसे बढ़ करके हमारा कर्तव्य भगवान के प्रति है। भगवान हमको सब कुछ दिए हैं, तो जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं भगवान के प्रति, तो इसको भगवत धर्म कहते हैं। जैसे भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम जप करना, भोग लगाना, भागवत पढ़ना, ये वृंदावन धाम जाना कभी कभी, ये भगवत धर्म है। भगवान से हम लोग नित्य कनेक्टेड हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने वाले जब हम व्रत करते हैं, जैसे एकादशी व्रत या महामंत्र का जप कीर्तन, तो इसको भगवत धर्म कहते हैं। भीष्म पितामह ने इस पर बहुत विशेष प्रवचन किया है, और इसी प्रवचन के भीतर उन्होंने विष्णु सहस्र नाम को बताया जपने के लिए। महाभारत को, उस सेक्शन को नारायणियोपाख्यान कहते हैं। भगवान नारायण के विषय में, कृष्ण के विषय में उन्होंने प्रवचन किया। तो भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य है, प्रतिदिन भगवान से कनेक्शन जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान की बनाई हुई दुनिया में जिए और भगवान को कहें कि निराकार है। निराकार धर्मान पर ही प्रवचन नहीं किए भीष्म पितामह, भगवत धर्म पर प्रवचन किए। आप पढ़िए महाभारत, क्लियर पता चलेगा। समासो व्यास जोगता, और किसी किसी कहीं जरूरत पड़ने पर बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं, कहीं संक्षेप में कई बार, और किस तरह से धर्म क्या है, स्वर्ग कैसे मिलेगा, धन कैसे बढ़ेगा, कैसे आदमी सुख से जिएगा अधिक से अधिक दिन तक, ये सब उन्होंने बताया। इसको काम कहते हैं। काम का अर्थ है इंद्रियों को खुश रखना, इंद्रिय तृप्ति। किस तरह हम इंद्रियों को सुख से रह करके और लंबा जीवन पा सकते हैं, सुख से जी सकते हैं, इस पर भी उन्होंने प्रवचन किया। धन कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी प्रवचन, और इसके बाद स्वर्ग कैसे मिलेगा इस पर भी प्रवचन है। इस प्रकार नाना आख्यान इतिहास ऐसे अनेक कहानियों में प्राचीन इतिहास सुना रहे थे, इस व्यक्ति ने इस प्रकार धन प्राप्त किया, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किया, इस वर्ण वाले ने अपने धर्म का पालन किया, इस आश्रम वाले ने अपने धर्म का पालन किया, सब सिखाया। इन विविध धर्मों पर प्रवचन करते 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 वह समय आ गया जिस समय की प्रतीक्षा वे जोगी करते हैं जो मृत्यु को अपने वश में रखते हैं। धर्मम प्रवदतस तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः ये योगिनस छंद मृत्यु और वांछितस्तुत्तरायण। छंद का अर्थ था इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जिनकी मृत्यु होती है उनको छंद मृत्यु कहते हैं। तो छंद मृत्यु योगी जन एक कालः प्रत्युपस्थितः ये योगिनस छंद मृत्यु और वांछितस्तुत्तरायण। छंद का अर्थ था इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जिनकी मृत्यु होती है उनको छंद मृत्यु कहते हैं। तो छंद मृत्यु योगी जन एक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, काल की प्रतीक्षा करते हैं कि उस काल में हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी ऊर्ध्वगति होगी। समय भी अपनी ओर से हेल्प करता है, काल पर जरूर विचार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं काल पर क्या विचार करना है, कभी भी मरो, कभी भी जियो, कभी भी कोई काम करो। हम लोग देखते हैं विवाह शादी में कितना काल पर विचार किया जाता है, लगन पर विचार किया जाता है ना, काल के अनुसार सब चलता है। तो शरीर छोड़ने के भी कुछ काल होते हैं, समय होते हैं। उस समय पापी आदमी भी यदि शरीर छोड़ता है तो वह काल अपनी ओर से कुछ मदद करता है उसकी शुभ गति में, और देश भी मदद करता है। जैसे देश मान लीजिए वृंदावन हो द्वारका हो कुरुक्षेत्र हो, ऐसे जगह में यदि शरीर छूटता है तो वह देश वह स्थान अपनी ओर से हमारी मदद करता है ऊपर उठाने में, तो देश काल का अंतर कहते हैं। तो योगी जो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ने में समर्थ होते हैं वे चाहते हैं कि हम उत्तरायण में शरीर छोड़े। उत्तरायण प्रारंभ होता है मकर संक्रांति के बाद, 14-15 जनवरी से चालू होता है, इसके पहले दक्षिणायन रहता है। योगी लोग दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ना चाहते, यदि अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ सकते हैं तब। भीष्म पितामह भी इसी तरह के एक महान योगी थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं उत्तरायण में शरीर छोड़ूं और उस स्थिति में जबकि भगवान कृष्ण मेरे साथ रहे, इस तरह से शरीर छोड़ना चाहते थे। तो धर्म पर प्रवचन करते 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 वह समय आ पहुंचा। देखिए युद्ध हुआ था एकादशी के दिन, अगहन एकादशी के दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, गीता जयंती के दिन, तो 18 दिन युद्ध चला। तो कितना होगा, लगभग अमावस्या आ जाएगी, पौष की अमावस्या। तो फिर माघ आ गया था, अभी बाण सज्जा पर थे, कुछ काल और प्रवचन किए। तो प्रवचन करते 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 स काल प्रत्युपस्थित, वह काल आ गया जिस काल की योगी लोग प्रतीक्षा करते। तो उस समय उन्होंने अपनी वाणी को चारों तरफ से समेट लिया, जो नाना इतिहास आख्यान कहने में वाणी फैली हुई थी उसको समेट लिया उन्होंने, मतलब बोलना छोड़ दिया, और भगवान श्री कृष्ण का केवल वर्णन करने लगे। भीष्म पितामह के लिए यहां सहस्रणी शब्द का प्रयोग किया गया। सहस्रणी का अर्थ होता है जो एक सहस्त्र रथियों को कंट्रोल करे, उसको सहस्त्रणी कहते हैं। भीष्म पितामह महारथियों को कंट्रोल करते थे, उनके साथ सब लोग चलते थे, वे नायक थे, तो सहस्त्रणी कहा गया। अथवा सहस्रिणी पाठ होगा तो उसका अर्थ है कि हजारों विषयों के वर्णन में वाणी जो फैली थी उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। अब दूसरा वर्णन सुन छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण में मन लगाए। तदोप संघृत गिरह सहस्र विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते लिव्य धारयत। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में मन को लगाया, तो श्री कृष्ण का वर्णन है कैसे श्री कृष्ण आदि पुरुष जो सबके कारण हैं, उन आदि पुरुष कृष्ण में मन लगाया। और कथम भूते कृष्णे लसत पीत पटे, जिनका पीत पट बहुत सुंदर लग रहा था, फहरा रहा था उस समय, लसत पीत पटे और चतुर्भुजे पुरस्थिते, भीष्म पितामह के सामने बिल्कुल खड़े थे और उन पर अपना मन स्थिर किया भीष्म पितामह ने। अमिलित दृक, आंखों को खुला रख करके ही, आंखों को बंद करके वे ध्यान नहीं कर रहे थे। अमिलित दृक, मिलित कहते हैं बंद करना, आंखें खुली थी और ऐसे भगवान पर एकटक देख रहे थे। कैसे मन को भगवान में लगाए, विमुक्त संगम, उनका मन संसार के समस्त आसक्तियों से मुक्त था और कहीं मन नहीं जा रहा था, भगवान में लगा हुआ था। यदि हम लोग किसी रूप में मन लगाना चाहें तो ये बहुत कठिन है, मन भाग जाएगा। खुला लगाना तो और कठिन है, बंद करने पर भी नहीं लगा सकते। कुछ लोग तो ऐसे ध्यान पर बैठते हैं, लेकिन आज के युग में वास्तव में यह ध्यान एक नाटक मात्र होता है, ध्यान करते नहीं है। लेकिन सामान्य लोग समझ लेते हैं, केवल आंख बंद होने से और शरीर सीधा रखकर बैठ जाने से लोग समझते हैं ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का वास्तविक मतलब है मन को भगवान में लगाना। यदि मन भगवान में लगा है तब माना जाएगा कि ये ध्यान हो रहा है। लेकिन आज ऐसे भी ध्यान करने वाले हैं, जो लोग उनसे पूछिए कि आप क्या ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि ज्योति का ध्यान करते हैं। कहां से वो ज्योति मिल रही है, ऐसे वो कल्पना करते हैं वास्तव में कि एक ज्योति आ रही है, कोई ज्योति आती होती नहीं है। ज्योति का ध्यान करना है तो उसे अच्छा है कि ट्यूबलाइट को देखा जाए या बल्ब को देखा जाए। कहीं भी आप देखिए शास्त्र में भगवान के अंग को छोड़कर और किसी के ध्यान की बात नहीं कही गई। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, ध्यान से अवस्थित एकाग्र और तद गतेन भगवान में निविष्ट मन द्वारा उनका ध्यान करते हैं योगी लोग। किसका, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवंति दिव्य स्तवई वेदई सांग क्रमोपनिषदर गायंत यम साम गा। साम वेद को जानने वाले लोग जिनकी कीर्ति गाते हैं और वेदों के द्वारा जिनकी कीर्ति का वर्णन करते हैं, और ब्रह्मा रुद्र मरुत आदि जिनके रूप का ध्यान करते हैं, उन प्रभु का चिंतन करते हैं योगी लोग। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, उस हरि का हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान का वास्तविक विषय है भगवान कृष्ण, और बहुत अच्छी तरह से ध्यान किया जा सकता है। सामने आंख खोल करके ध्यान कीजिए, चाहे आंख बंद करके ध्यान कीजिए। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, पीताम्बर लहरा रहा है, राधा रानी के साथ खड़े हैं, या रासलीला में नाच रहे हैं, या गाय चरा रहे हैं, गोवर्धन धारण किए हैं, कालिए के फण पर नृत्य कर रहे हैं, ये ध्यान है, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान किसी निराकार या किसी तेज का नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु पर का ध्यान किया जाता है। पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में कहा है कि विष्णु भगवान ध्यान के विषय, जिसको ध्यान कहते। तो भीष्म पितामह भगवान के मुख को देखने लगे एक तक, और इस विशुद्ध धारणा से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। पाप का यहां अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में प्रतिबंधक दुर्योधन आदि का संग जो उन्होंने किया था, वो सारा अपराध समाप्त हो गया। हत अशुभ, और शरीर की व्यथा जो थी आयुध के कारण, वो तो जिस समय भगवान कृष्ण ने उनको शुरू में देखा था उसी समय वो दर्द चला गया था, व्यथा नहीं रह गई थी। और उनके इंद्रियों का बहिर्विषयों में विभ्रम विविध भ्रमण समाप्त हो गया। अब कान कोई दूसरी बात नहीं सुन रहे थे, आंखें कहीं दूसरी जगह नहीं गई थी, मन कहीं नहीं गया था, केवल भगवान में था। कृष्ण के मुख को देख रहे थे, पीताम्बर को देख रहे थे, और भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। जन्यम विसर्जन, अब इस शरीर को छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ते समय भगवान का वर्णन कर रहे हैं। दर्शन, चिंतन और वर्णन तीनों साथ साथ चल रहे हैं। मन भी कृष्ण में है, वाणी कृष्ण में है, और आंख भी कृष्ण में है। इसको मनसा, वचसा और कर्मणा कहते हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं कृष्ण के विषय में, इसको कीर्तन कहते हैं। आधुनिक युग में लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वे भगवान के भजन का नाटक करते हैं लेकिन बोलते नहीं है। एक आश्रम में मैं एक बार गया था, तो आश्रम के गेट पर लिखा गया था, कृपया चुप रहिए, कृपया चुप रहिए। तो हमारे साथ दो भक्त गए थे नए नए, तो इन लोगों को तो ट्रेनिंग है कि जहां जाए वहां कीर्तनी और सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो दोनों लड़के हमसे आगे चले गए, आगे चले गए तो इन्होंने पढ़ा नहीं, और पढ़ते भी तो मानते नहीं, वो हरे कृष्ण करते जा रहे। तब तक एक दौड़ करके आया उधर से एक आदमी, आकर कहा चुप 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 चुप, ये बच्चे तो डिस्टर्ब हो गए चुप पे। तो मैं इसके बाद लगभग एक डेढ़ मिनट के बाद प्रवेश किया, तो वो लोग चुपचाप बैठे थे, और वो कह करके मना करके चला गया घर में। वो कहा कि महाराज वो तो चुप रहने के लिए कहता है। तो मैं कहा और जोर से बोलो, चुप रहने के लिए कहा और जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब बोलने लगे तो फिर वो आदमी आया, फिर आदमी आया, कहा कि मैं आप लोगों को चुप रहने के लिए कहा ना। मैं कहा नहीं, आप भी बोलिए हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो थोड़ा नरम होकर कहा, नहीं स्वामी जी, यहां का नियम है कि सबको चुपचाप बैठाया जाता है, यहां का एक नियम ही है कि जो आएगा चुपचाप बैठने को कहा जाएगा। और बताया कि हमारे गुरु महाराज जब आसन पर आते हैं तो उस समय वो भी चुप बैठते हैं, और जो भी आता है चुप रहता है, चुप। और कोई बात नहीं, वो लोग चुपचाप आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो मैं उनको समझाया कि देखिए शास्त्र कहता है कि हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान श्री कृष्ण का सब समय और सब जगह कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम आप लोगों को भी बोलना चाहिए। वास्तविक शांति यह है, ये तो शांति श्मशान की शांति है, वहां चुपचाप कोई नहीं रहता, कोई नहीं बोलता है, ये तो बिल्कुल श्मशान की डेड शांति, डेड साइलेंस हो गया, ये तो ठीक नहीं है। तो वो बेचारा कन्विंस हो गया, वो कहा कि महाराज मैं समझता हूं लेकिन अभी यहां का नियम है और गुरु जी ऐसा कहते हैं, हम क्या करें। तो इस तरह की शांति हुई, शांति। तो लोग समझते हैं कि चुप रहना ही साधना है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी आए थे भारत, विदेश से भारत में अपने 40 शिष्यों के साथ, बंबई में जब रुके थे तो उसमें भारत साधु समाज का सम्मेलन चल रहा था बंबई में, बहुत सुंदर मंच लगाया गया था, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और कौन कौन आचार्य लोग सब आए थे, भारत साधु समाज के अध्यक्ष आए थे, कई कई लोग, तो वे लोग बड़ी श्रद्धा से श्रील प्रभुपाद जी को भी निमंत्रण दिए। सुना उन लोगों ने कि एक लोग कीर्तन करते हैं तो जरा बुलाया जाए, यहाँ कीर्तन कर लें। तो श्रील प्रभुपाद जी बैठे, ऐसे बड़ा आसन था तो वहां आकर बीच में बैठे, सभी साधु महात्मा मंच पर बैठे थे, बड़े बड़े, सबको बैठने का अधिकार नहीं था, महान महान महांत लोग और मंडलेश्वर मठाधीश ये जो भी हैं सब बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि थोड़ा कीर्तन हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कीर्तन होना चाहिए। तो ये लोग तो सोचे कि बैठ करके कुछ गाएंगे बजाएंगे, तो प्रभुपाद जी करताल लेकर के कीर्तन चालू किए और उनके शीश से एक दो मृदंग लिए थे, वे लोग बजाना चालू किए। पहले तो बैठ कर बजा रहे थे, प्रभुपाद जी ने इशारा किया कि खड़ा होकर के बजाओ, प्रभुपाद जी बैठे रहे, तो शिष्य लोग कीर्तन चालू किए ढोलक बजाना, तो एक दो खड़े हुए तो सब धीरे धीरे खड़े होने लगे और मंच पर आने लगे, जो नीचे बैठे थे एक दो भक्त मंच पर आने लगे। मंच पर आकर के जब कीर्तन चालू किए, जब जमने लगा कीर्तन, तब उनके पैर भी दाएं बाएं चलना चालू हुए। तो ये विदेशी भक्त ये केयर नहीं कर रहे थे कि हमारा पैर मंडलेश्वर के सिर के पास जा रहा है इधर इधर, और मंडलेश्वर लोग धीरे धीरे सरकने लगे आसन से। चाहिए तो था कि खड़े हो जाते कीर्तन में, है कि नहीं, लेकिन अब वो अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते थे, अब कैसे इन लड़कों के बीच में नाचे। लेकिन वो लड़के तो लड़के थे, अब वो लोग केयर नहीं करते थे, प्रभुपाद जी कीर्तन की ताल बढ़ाए और नाचना चालू हुआ तो पैर कहां जा रहा है भांज रहे हैं, सभी लोग मंच छोड़कर नीचे हो गए, मंडलेश्वर लोग सब लोग नीचे हो गए। और इसके बाद मचा कीर्तन, कीर्तन मचा तो दर्शक उसमें आना चालू किए, रोका जाने लगा, नहीं नहीं आप लोग नीचे रहे नीचे, लेकिन वो आना चाहते थे, सब नाचना चाहते थे, और नाच चालू हुआ, मंच पूरा अधिकृत हो गया, साफ हो गया, कोई अब था नहीं सामने, कुछ लोग छिप करके देख रहे थे, मंडलेश्वर लोग कोई कुछ लोग क्या हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी को इसके बाद बोलने के लिए कुछ टाइम दिया गया, तो वो बोले कि मुझे जो कुछ बोलना था वो तो हम लोग करके दिखा दिया आपको। यही करने यही बोलना था कि सबको कीर्तन करना चाहिए, सबको कीर्तन करना चाहिए, तो ये हम लोगों को सिखाया गया है। वास्तव में इस युग में यह डेड साइलेंस उचित नहीं है, बिल्कुल चुप रहो, कुछ पता ही नहीं चले कि क्या सोच रहा है, क्या करेगा, और बोला कब जब मना करना हुआ, मत बोलो। और हम लोग कहते चांट हरे कृष्णा, इधर से हरी बोल। ये तो उपदेश है हमेशा, उधर से लिखा गया चुप रहो, हम लोग कहते हरी बोल, चुप क्यों रहे, हरी हरी बोलो। हम लोग चुप के विरोधी हैं वास्तव में, मन से भी चिंतन होना चाहिए, वाणी से कीर्तन होना चाहिए और शरीर से दर्शन होना चाहिए भगवान का। दर्शन करें कुछ, ठाकुर जी के बारे में बोलें, ठाकुर जी भी कुछ सुनना चाहते हैं कि क्या क्रोध में आया है, कि कुछ कहना चाहता है, क्या बात है, तो आवे तो कुछ तो कहना चाहिए। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भाग पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। कुछ वर्णन करके प्रणाम करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कुछ तो कह करके प्रणाम करें। इस तरह से चुपचाप भगवान भी
परेशान हो जाएंगे कि क्या सोच रहा है। वैसे तो भगवान हृदय की सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलना चाहिए, बोलने से मंगल होता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, भगवान का नाम सुनने से शुभ होता है, लेकिन जब सुनाने वाले रहेंगे तब ना। जहां भी जप करना हो तो बोलते हुए चलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भीष्म पितामह भगवान का यश बोल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और मन से चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं। तो अब हम दूसरे सिटिंग में भीष्म पितामह की स्तुति चालू करेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण का किस तरह वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण जय श्री लक्ष्मी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, भीष्मा उवाच, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि जदभव प्रवाह त्रिभुवनकमनम् तमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरम् दधाने वपुरलककुलावृताननार्जाम् विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या जुधितुरगरजो विधुम्रभिश्वा कचलुलितश्रमवार्जलङ्कृताश्चे मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखो सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा हृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु भीष्म उवाच।
भीष्म जी ने कहा, इति अपनी आयु समाप्ति के समय मति ही मेरी मति उपकल्पिता समर्पिता है, वितृष्णा जो सब प्रकार की कामनाओं से शून्य है, भगवती भगवान में, सात्वत पुंगवे सात्वत शिरोमणि जादव शिरोमणि में, विभूमनी
जिनसे भूमा दूर है, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, स्वसुखम उपगते, अपने अप्राकृत सुख में रहते हुए भी क्वचित कभी कभी विहरतुं, विहार करने की इच्छा से प्रकृति बहिरंगा प्रकृति को उपेयुषी जो स्वीकार करते हैं, जद जिस प्रकृति से भव प्रवाह यह संसार रचा जाता है, सृष्टि परंपरा चलती है, त्रिभुवन कमनाम जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं, तमाल वर्णाम जिनके शरीर का रंग तमाल के समान नीला है, रविकर गौरवराम्बराम जिनके श्री विग्रह पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान पीत वर्ण का पीताम्बर शोभित होता है, ऐसे बपु को दधाने जो प्रकट किए हैं उनमें वपु हो शरीर अलक कुलावृतान्नाब्जम जिनका मुख कमल लटकती हुई अलकों से आवृत है, ऐसे श्री विग्रह को जो प्रकट किए हैं, विजय सखे अर्जुन के सखा में रति ही प्रीति अस्तु हो मैं मेरी अनवद्या फलाभिसंधान रहिता। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए शरीर त्यागना चाहते हैं। इस श्लोक के पहले श्लोक में शरीर के लिए जन्यम शब्द का प्रयोग किया गया। जन्य का अर्थ होता है जिसका जन्म होता है, जो जन्म ले जन्म लेने लायक है उसको जन्य कहते हैं, और जो जन्म देता है उसको जनक कहते हैं। जैसे पिता को जनक कहते हैं, और जन्य का अर्थ है जो जन्माया गया है। यह शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेता है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि न जायते मृते वा कदाचित, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसा नहीं किसी समय यह जन्म लिया है, और न यह कभी मरेगा। कदाचित न जायते न मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, यह कभी भूतकाल में न हुआ है, न आगे होगा, न इस समय हो रहा है। हो रहा है मतलब जैसे शरीर बढ़ता है घटता है वर्तमान में भी, इस तरह से आत्मा बनता नहीं है। यह शरीर एक दिन जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी यह होता रहता है, बढ़ता रहता है। हम लोग कहते हैं इतने वर्ष के हो गए, इतने वर्ष के हो गए, शरीर भी बड़ा होता है, उसके साथ बुद्धि भी बदलती जाती है, तो इसको भूय कहते हैं संस्कृत में। जो हो जिसमें विकार हो बढ़ना घटना लगा रहे उसको भूय, और न भविता ऐसा नहीं है कि यह शरीर यह आत्मा कभी जन्म लेगा या होगा। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। उसी को कह रहे अज, यह अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अनादिकाल का है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीरे हन्य माने शरीर के मारे जाने पर, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा न हन्यते, यह नष्ट नहीं होता है। न हन्यते हन्य माने शरीर, तो हम लोग आत्मा है इसलिए आत्मा की स्थिति को ठीक ठीक समझना चाहिए। हम देह नहीं है, आत्मा है। इस तरह का पता नहीं कितना देह मिलेगा मिला होगा, हम आत्मा, आत्मा की स्थिति को समझना चाहिए। तो आत्मा जिस शरीर में जन्म लेता है जाता है, तो उस शरीर का एक दिन जन्म होता है और वह शरीर बढ़ता है, तो इसलिए शरीर को जन्य कहा जाता है। जन्य, उसका जनक कौन है? आत्मा। आत्मा जनक है, आत्मा शरीर में है इसलिए शरीर बढ़ता है। भागवत के तृतीय स्कंध में लिखा गया है, भगवान कपिल देव कहते हैं कि जब माता पिता का संयोग होता है स्त्री पुरुष का, तो उनके शुक्र पर माया शक्ति जीव को बैठा देती है और चेतन जीव होने से वह शुक्र वह वीर्य बढ़ना चालू होता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। यदि जीव उस पर न बैठे तो वह बढ़ नहीं सकता। या हम लोग देखते हैं कोई बच्चा यदि अकस्मात मर गया तो फिर उसका शरीर बढ़ता नहीं है, वहीं रुक जाता है। तो आत्मा के कारण शरीर बढ़ता है, इसलिए शरीर को जन्य कहते हैं। यह मरण धर्म है, मरना निश्चित है और इसका जन्म होता है। जिसका जन्म होता है वो मरेगा ही, तो शरीर का जन्म हुआ है, शरीर एक दिन जाएगा। तो इस शरीर को विसृजन छोड़ते हुए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, इति मति उपकल्पिता, अपनी आयु समाप्ति के समय मैं अपनी मति को समर्पित करता हूं। उपकल्पिता, कल्पित का अर्थ होता है रखना, और रूप माने अच्छी तरह से, जहां मति को रखना चाहिए।